भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो दुनिया भर में समाचारों की सुर्खियों में है, और हो भी क्यों ना, लगातार अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की कामयाबी में उसने 4 चांद लगाते हुए एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया है। ये कारनामा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसरो की इस सफलता के बारे में बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला साहब। पल्लव सर, एसबीएस रेडियो पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद
पल्लव जी। भारत के जो ओवरऑल सिस्टम है उसको कहा जाता है प्रगतिशील या फिर खराब, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मगर अगर इसरो की बात करें, अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करें, तो शायद भारत सबसे बेहतरीन में गिना जा सकता है। कैसे हुआ ये सब?
देखिए, जहां तक अंतरिक्ष विभाग का काम है और अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की पहल है, वो बिल्कुल विकसित देशों जैसी है। अगर आप नासा में या यूरोपियन स्पेस एजेंसी में या इजराइल की स्पेस एजेंसी में किसी से भी बात करें, जब वो बात करते हैं हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी की, तो वो बिल्कुल विकसित देशों के अव्वल दर्जे में आती है, और कुछ मायनों में तो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी और देशों से भी ज्यादा अच्छी है। अब उसके कई कारण हैं। एक तो देखिए, बहुत छोटा बजट है इसरो का, और उस बजट में बहुत ढेर सारे मिशन वो कर लेते हैं। वो पैसे कम खर्च करते हैं और काम ज्यादा कर लेते हैं। उस मामले में लो कॉस्ट, क्रेडिबल, रिलायबल और एक्यूरेट मिशन करने में अब इसरो ने अपनी धाक जमा ली है। जी,
अब एक और बात कही जाती है, इतना कामयाब हो रहा है, अगर हम पिछले 5-7 साल में देखें तो इसरो काफी कामयाब है, मगर जो मार्केट शेयर है स्पेस लॉन्चिंग का, वो अभी भी 41% अमेरिका के पास है और हिंदुस्तान के पास महज 4% है। उसकी क्या वजह देखते हैं?
देखिए, उसकी वजह बड़ी सीधी सादी है। हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की एक में से 6 लोग हिंदुस्तान के हैं। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है भारत की। इसरो जो है वो नेशनल एजेंसी है, और वो नेशनल एजेंसी, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत की अपनी नीड्स को पहले पूरा करे। जब भी कभी उनके पास कोई स्पेयर कैपेसिटी होती है तो वो स्पेयर कैपेसिटी कमर्शियल लॉन्चेस के लिए अवेलेबल कराई जाती है। लेकिन हाँ, इसरो कमर्शियल लॉन्चर नहीं है, तो अगर आप चाहें कि वो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग या आर्यान स्पेस की तरह कमर्शियल लॉन्चेस करने में लग जाए, तो वो अभी इसरो नहीं कर रहा है। तो उसी का कारण है कि आपको कमर्शियल लॉन्च मार्केट में मार्केट शेयर कम लग रहा है। लेकिन जब इतने बड़े देश की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट हो और उसको पूरा करने में ये 15,000 से 20,000 वैज्ञानिक और इंजीनियर लगे हों, तो पहले नेशनल नीड पूरी करनी होती है, और वो नेशनल नीड ही इतनी बड़ी है कि वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो जब वो पूरी हो जाएगी और या लॉन्चर और चीजें बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तब जरूर इसरो कहीं ना कहीं कमर्शियल लॉन्च मार्केट में ज्यादा जोर शोर से उतरेगा। तो ऐसी कोई मायूसी की बात नहीं है कि कमर्शियल लॉन्च मार्केट में इसरो का बहुत भाग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो अपने ही रॉकेट भेज के, अपने ही सैटेलाइट भेज के देश का, हिंदुस्तान का पैसा बचा सकता है, तो उससे कोई और अच्छी बात नहीं हो सकती। पैसा कमाना कमर्शियल लॉन्च में वो अलग बात है।
जी सर, एक और चीज है, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हो या रशिया हो, वो पिछले करीब एक दशक से आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, मगर भारत की जब बात आती है, भारत का इसरो जब उनसे बात करना चाहता है या उनके साथ सहयोग करना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं।
नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। कई साल पहले तक, खासकर 2004 में जब अमेरिका का और इंडिया का सिविलियन न्यूक्लियर डील नहीं हुआ था, जब 2004 में हुआ और बाद में 2008-10 में सारे रास्ते खुले, तब तक बहुत टेक्नोलॉजी डिनायल थी, बहुत सैंक्शंस लगी हुई थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस पे, और वेस्टर्न नेशंस जो थे वो हिंदुस्तान के साथ साझा करने में बहुत नाक बहुत सिकोड़ते थे। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो हिंदुस्तान के लो कॉस्ट रिलायबल मिशंस को देखते हुए इंक्रीजिंगली वो खुद पार्टनर करना चाहते हैं। रूस का और इंडिया का तो साझा जो है वो बहुत पुराना है स्पेस के क्षेत्र में, इंडिया और फ्रांस का भी स्पेस के क्षेत्र में बहुत पुराना साझा रहा है, बहुत दोस्ती रही है। अमेरिका से ये परमाणु करार होने के बाद दोस्ती बढ़ी है, तभी आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली जो अमेरिका के कमर्शियल लॉन्च एग्रीमेंट्स हैं वो हिंदुस्तान की तरफ रुझान कर रहे हैं। छोटी छोटी कंपनियां हैं, जैसे इस बार 96 सैटेलाइट अमेरिका के थे, 104 में से 96 अमेरिका के सैटेलाइट थे अमेरिकन कंपनीज के, तो वो अब रुझान कर रही हैं। लेकिन बड़ा सैटेलाइट जो है अभी भी अमेरिकी कंपनियां अपने ही रॉकेट्स में भेजना पसंद करती हैं। तो ये कहना कि हिंदुस्तान और दुनिया में कोई मेल जोल नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात होगी। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उस अलग पहचान को बना के ही आगे बढ़ेगा, मेरा ऐसा मानना है।
आखिरी चीज ये कि अब इसरो के लिए अगला कदम आप क्या देखते हैं, कहाँ नजर है उनकी?
देखिए, इसरो की नजर सारी तरह से टिकी हुई है किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत की जनता के लिए आगे से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से भारत की जनता को उसका बेनिफिट दिया जाए। तो बेटर एंड बेटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बेटर एंड बेटर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिससे कि भारत की जनता को और फायदा हो स्पेस टेक्नोलॉजी का, किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में यूज किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास एक लगाव है स्पेस की ओर, अंतरिक्ष की ओर, और वो चाहते हैं गवर्नेंस में अंतरिक्ष विभाग का और ज्यादा बोलबाला हो, और ज्यादा जोर हो। इस सब के बीच में थोड़ा सा बजट इसरो अपना इंटरप्लैनेटरी मिशंस की तरफ भी लगा रहा है। आने वाले एक साल में इसरो का एक दूसरा मिशन है जो चांद की ओर जाएगा, चंद्रयान 2, और अभी इसी बजट में पहली बारी इसरो को ग्रीन सिग्नल मिला है फिर दोबारा मंगल ग्रह पे जाने के लिए, और पहली बार शुक्र ग्रह पे या वीनस पे जाने के लिए। तो इरादे और हौसले बहुत बुलंद हैं इसरो के, और आने वाले टाइम में इसरो जो है अपने ये मिशंस को एक एक करके जरूर पूरा करेगा।
पल्लव बागला साहब, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा।